आज हमारे बीच बाबा के अनमोल रत्नों की माला से जगमगाते बेशकीमती रत्नों में से एक रत्न आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी हमारे बीच में हैं। हम उनका तहे दिल से सत्कार करते हैं और नमन करते हैं। आदरणीय दीदी बाल्यकाल से ही आध्यात्म की स्वर लहरी रही, उसी में ही रची बसी। आपने MBBS किया मानव समाज की कर्मठ सेवाओं के लिए, हम आपको डबल डॉक्टर भी कह सकते हैं। आपने 10 वर्ष अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी और हमारी जो परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि रहे, आपने एज ए डॉक्टर उनके साथ भी लंबे टाइम सेवाएं की। लेकिन आपको तन की सेवा के साथ साथ मन की सेवाएं बहुत अच्छी लगी, तो आप अपने मुख्यालय में समर्पित 35 वर्षों से होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आप महिला विंग के मुख्यालय कोऑर्डिनेटर हैं, BIP की भी आप बहुत अच्छी सेवाएं देती हैं, राजयोग शिविर भी कराते हैं और ब्राह्मणों के पुरुषार्थ के लिए भी आप क्लासेस कराते हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं और दीदी का चेहरा हमेशा हर्षित मुख रहता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है, जो कभी भी अपने सवार को गिरने नहीं देती है, न किसी के कदमों में और न किसी के नजरों में। तो आज हम दीदी के मुखारविंद से सुनेंगे सत्यता की शक्ति। आदरणीय सविता दीदी जी,
ओम शांति। फिर से एक बार बोलेंगे बाबा की याद में ओम शांति। बाबा ने इस रविवार को ही जो वाणी चलाई, अव्यक्त मुरली थी, उसमें हमें सत्य ज्ञान की शक्ति क्या होती है या सत्यता की शक्ति क्या होती है, उस पर बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया। शिव बाबा को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो ईश्वर सत्य है, इसीलिए उसे सच्चाई पसंद है और सफाई, सच्चाई और सफाई। इसीलिए हम कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। शिव बाबा ही हमारे सत्य बाप हैं, सत शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। ऐसे तो बहुत बाप हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, लेकिन सत्य बाप एक है, सत शिक्षक भी एक है और सतगुरु भी एक है। और जो शिव बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से ही सतयुग की स्थापना होती है। नाम भी है सतयुग, सत्य का युग। तो बाबा मुरलियों में कई बार समझाते हैं कि सत्य शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। एक है सत्य माना अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और दूसरा है सत्य माना सच। तो शिव बाबा अविनाशी भी हैं और वो सत्य भी हैं। यानी बाबा से जो होने वाली प्राप्तियां हैं हमें, वो भी अविनाशी हैं। जन्मों तक आत्मा के साथ चलती हैं और कल्प कल्प की हैं। केवल एक कल्प की प्राप्ति है नहीं, जो हमने इस कल्प में प्राप्ति की वो आने वाले सभी कल्पों में हूबहू हम वही प्राप्तियां फिर करेंगे, तो वो अविनाशी है। और शिव बाबा के लिए ही हम कहते हैं कि उनकी याद करना यानी परमात्मा से लगन लगाना माना सत्य के संग में जाना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जो ईश्वर से लगन लगाते हैं वो सत्संगी हैं, सत का संग करने वाले हैं। तो हम तो सही अर्थों में सत्य का संग करने वाले हैं, जो एक सत्य परमात्मा है और उसने ही हमें सत्य ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान दिया, स्वयं का सत्य परिचय दिया। भले ही शास्त्रों में ज्ञान है, पुराणों में भी ज्ञान है, जो भी पुस्तकें हैं भक्ति मार्ग के, उपनिषद हैं, लेकिन उन सब के होते हुए भी जब शिव बाबा इस धरती पर अवतरित होते हैं तभी आत्मा का सत्य ज्ञान हमें मिलता है, आत्मा के सत्य गुणों की पहचान हमें मिलती है, तो अपने सत्य स्वरूप में हम स्थित हो पाते हैं। जो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये आत्मा का सत्य स्वरूप है, इस स्वरूप का हम अनुभव कर पाते हैं। शिव बाबा के आने पर ही हमें परमात्मा का सत्य परिचय, उसके सत्य धाम का पता चलता है। नहीं तो सुनते आए है ना, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो कण कण में है, लेकिन हमें परिचय मिला कि शिव बाबा तो परम धाम निवासी हैं। तब हम शिव बाबा को एकाग्रता से परम धाम में याद कर पाते हैं। हमें इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का भी सत्य रहस्य शिव बाबा से स्पष्ट हुआ, क्योंकि वो सत्य शिक्षक है, तो ये सारा सत्य ज्ञान। नहीं तो शास्त्रों में है कि चक्र के बारे में तो बताया, लेकिन लाखों वर्षों का है, सतयुग ही लाखों वर्षों का है, और अभी कलयुग के खत्म होने में भी कितना समय बचा हुआ है, 40,000 वर्ष बचे हुए हैं ऐसा कहते हैं। पर बाबा कहता है कि बच्चा नहीं है, लेकिन नहीं, कलयुग बच्चा नहीं है लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा बच्चा है। तो ये जो घड़ी है, जो सृष्टि की घड़ी है, वो अपने अंतिम चरण पर, उसकी जो सुइयां हैं, उसके जो कांटे हैं, वो बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। और उसमें हमारा पार्ट क्या है वो भी हमने समझा, तो बाबा ने रविवार की मुरली में भी बताया कि सबसे हीरो पार्टधारी हम आत्माएं हैं, और उसका कारण है कि पवित्रता की शक्ति है आत्मा के अंदर, जो सत्यता के आधार पर है। सत्यता नहीं, पवित्रता नहीं, तो दिव्यता भी नहीं आती है। तो वो शक्ति आत्मा के अंदर आ गई, पवित्रता जो आत्मा का स्वधर्म है, सत्य धर्म है आत्मा का। तो चाहे विश्व की आत्माएं कितना ही हमें उस धर्म से हटाने की कोशिश करें, आज कलयुग में तो मानते हैं ना इस बात को कि विकार नेचुरल है ना, अपवित्र रहना उसको नेचुरल नहीं मानते हैं, पवित्र रहने को नेचुरल नहीं मानते हैं। तो बाबा ने हमें ये रियलाइज कराया कि हमारा धर्म, हमारा स्वभाव वो पवित्रता है, अपवित्रता स्वभाव नहीं है। तो इस आधार पर हम आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हैं सतयुग में, फिर भले कोई भी धर्म आत्माएं हुए हैं या और भी कोई महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन वो भले आत्मा से पवित्र हैं, लेकिन शरीर से वो पवित्र नहीं होते हैं। द्वापर युग से आते हैं तो फिर सिर्फ आत्मा की पवित्रता हो सकती है, शरीर तो विकार से ही पैदा होता है। तो ये बाबा ने नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, जो बाबा कहते हैं, और उसी के आधार पर हम सत्य नारायण बनते हैं। इसीलिए नारायण शब्द के आगे ही सत्य आता है, और किसी देवता के आगे सत्य नहीं आता। हम सत राम नहीं कहते, सत हनुमान नहीं कहते, सत गणेश नहीं कहते, लेकिन सत्य नारायण कहते हैं, क्योंकि सतयुग में ही सत्य नारायण हुए, और इसीलिए सत्य नारायण की कथा ही प्रसिद्ध है। तो ये परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। तो बाबा को इसीलिए कहा कि सच्चे बच्चे ही पसंद हैं। तो सच्चाई सफाई यानी अंदर बाहर एक जैसा। आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में क्या कहते हैं? कलयुगी दुनिया में कहते हैं कि सच्चाई से तो नहीं चल सकते। आज के समय में एक सच्चे का जीवन बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। सत्य का मार्ग बहुत मुश्किल मार्ग है, और इसीलिए आज के संसार को कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार ना? तो झूठ झूठ सारी दुनिया में आज कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कह सकता है कोई? हम सब ने बचपन से लेकर आज तक कितने ही झूठ बोले होंगे, और क्यों झूठ बोलते हैं वो हम सब जानते हैं। अपने आप को, अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, मानो मेरे से कोई गलती हो गई और मुझे पता है कि ये मेरी गलती सबके सामने आ गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, या मुझे कमजोर माना जाएगा, या मेरी इज्जत खराब हो सकती है अगर मेरी ये कमी सामने आ गई, तो फिर हम झूठ का सहारा लेते हैं। और अगर उसको दूसरे पर डालना पड़े तो उसमें भी नहीं चूकते, है ना, दूसरों पर दोष रख के और हम अपने आप को साफ बचा ले जाते हैं, और इतने अच्छे अच्छे तर्क देते हैं कि कहते हैं झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। सुनने वाले को लगता है इससे सच्चा तो कोई होगा ही नहीं, ये तो बहुत ही सच बोल रहा है, माना इतनी अच्छी तरह से उसको सिद्ध करते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद चलो हम इतनी चतुराई ना भी करते हों, क्योंकि बाबा जो हमें सत्य की राह पर चलाते हैं वो गुण हमारे अंदर आने लगता है, लेकिन फिर भी मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा कि कहीं कहीं ब्राह्मण भी समझते हैं कि थोड़ा तो चतुराई से चलना पड़ता है। आज की दुनिया ही ऐसी है, इतना सीधे सच्चे होकर के चलेंगे तो हमारा काम या हमें सफलता नहीं मिलेगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे बाबा ने बताया कि कोई कोई देखते हैं, देखो ये चतुराई से चलती है ना, तो इसका नाम कितना अच्छा हो गया है और ये तो आगे निकल गए हैं, इनको अच्छा चांस मिलता है, और हम तो सच्चे चलते हैं तो हम तो पीछे के पीछे ही रह गए। ऐसे ऐसे विचार चलने लगते हैं। तो हमें किसके दिल को जीतना है, ये बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि हमें आत्माओं को नहीं जीतना है, या आत्माओं के सामने आगे बढ़ने का महत्व नहीं है, लेकिन बाप के दिल को जीतना है। जैसे कहा ना, साहब राजी, साहब को राजी करना है, शिव बाबा को हमें राजी करना है, और अगर वो हमसे राजी है, अगर उसके दिल पर हमारा नाम आगे है, तो हमारा तो उससे काम है ना, तो उसकी प्राप्ति माना कल्प कल्प की प्राप्ति, जन्म जन्म की प्राप्ति। और यहाँ जो हमें नाम मिलेगा, यहाँ जो मान मिलेगा, वो तो अल्पकाल क्षण भंगुर का होगा। जो अभी है, हो सकता है कि कुछ समय बाद ना भी हो। तो उसके पीछे हमें नहीं जाना, फिर कई बार हम सिद्ध भी करते हैं मैं सच्चा हूं। अगर हमें लगता है कि हम सच्चे हैं और कोई हमें झूठा समझ रहा है या हमारे प्रति किसी को गलत फहमी हो रही है, कई बार होता है ना कोई गलत इल्जाम भी लगा देते हैं, तो फिर हम अपने सच को कैसे बोलते हैं? थोड़ा आवेश में आकर के बोलते हैं, है ना? आवेश में आकर के कहते हैं मैं सच्चा हूं ना, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम उसको सिद्ध करने लगते हैं कि मैं सच कह रहा हूं या कह रही हूं, लेकिन सत्य को कभी भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य को स्वयं सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। अगर हम उसको सिद्ध करने जाते हैं तो वो जिद हो जाता है, मानो हम उसको जिद कर रहे हैं और फिर ऐसा लगता नहीं कि हम सच बोल रहे हैं। सामने वाला फिर उसमें थोड़ा सा उलझन में आता है कि ये सच बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो सत्यता को भी सभ्यता से कहना, भले हम सत्य बोल रहे हैं, जैसे संस्कृत में कहा गया सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य सत्य नहीं लगता है। तो हम कड़वे शब्दों में अगर सत्य बोल रहे हैं, गुस्सा करके अगर हम अपनी सत्य बात कह रहे हैं, तो उसमें वो दिव्यता तो नहीं रही जो बाबा ने भी मुरली में कहा कि अगर सत्य है तो फिर वो दिव्य होगा। दिव्य गुणों के आधार पर कर्म करना वो दिव्यता है। जैसे हम कहते हैं विकारों के आधार पर कर्म करना वो विकर्म हो जाता है, ऐसे ही दिव्य गुण, सत्यता एक महान गुण है, सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर वो सत्य हम बोल रहे हैं तो उतना ही मधुरता से, उतना ही नम्रता से, अथॉरिटी है सत्य की, लेकिन उस अथॉरिटी को हम किस तरह से कहेंगे? उसको हम अहंकार से नहीं, क्रोध आया माना कहीं ना कहीं अहम आ गया, मैंपन आ गया, लेकिन अहम भाव से नहीं, लेकिन निर्माणता से उस सत्यता को हम सामने रखते हैं। और नहीं तो समय आने पर वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, हमको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। सत्यता में स्वयं सिद्ध होने की ताकत है। ऐसे कहते हैं कि सत्य की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है कभी भी। तो जरूर हो सकता है कि हमें थोड़ा सहन करना पड़े, थोड़ा मुश्किलें हमारे सामने आए, कई बार घबरा जाते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं कि अगर सच्चे हैं तो निर्भय होंगे, कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी मुंझेंगे नहीं। जो झूठ बोलता है, जिसको पता होता है कि मैं अंदर में कहीं कहीं गलत हूं और जो मैं सामने दिखा रहा हूं वो अलग है ना, अंदर बाहर का रूप अलग है, तो वो उसको अपने झूठ को छिपाने के लिए कई बार 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अगर एक भी बात सामने आ गई तो उसको घबराहट हो सकती है ना, वो मूंझ सकता है। लेकिन जो सच्चा होगा वो कभी भी घबराएगा नहीं, कभी भी उलझेगा नहीं। और इसीलिए कहा सच तो बिठो नच, जो सच्चा है वो सदा ही खुशी में नाचता रहेगा। ये सिंधी कहावत है, सच तो बिठो नच, तो हर्षित चित होगा वो, निर्भयता है, निश्चिंत है, माना मन से हर्षित है। भले बाहर से जो है वो एक होता है कि एक खुशी का जो रूप होता है कि हम हंसते हैं, बाहर से दिखाई देने वाली खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन सदा प्रसन्न होगा। कई बार ऐसा होता है दुनिया में भी कि जो खुशी होती है बाहर से दिखाते हैं अपना, जैसे कोई हमसे मिलने आया तो हम उससे मुस्कुरा करके ही मिलेंगे, हाँ, लेकिन भले ही मन खुश है या नहीं है। कई कई प्रोफेशन भी ऐसे होते हैं कि भले आपका मूड अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप कैसे दिखाएंगे, मानो एक किसी कंपनी में कोई रिसेप्शनिस्ट है ना घर में हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई उससे उसका मन उदास है, लेकिन क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट है और उसका जॉब ही क्या है, जो भी आएगा उसका मुस्कुरा करके स्वागत करना है, तो भले मन कैसा भी है लेकिन वो सबका मुस्कुरा के ही स्वागत करेगी। ऐसे एयर होस्टेस है जो एरोप्लेन में सेवा देते हैं, उसका भी यही काम है, तो मन कैसा भी है लेकिन हर एक ग्राहक जो है, जो यात्री है सफर करने वाला, उसके लिए वो मुस्कुराकर ही उसको बात करनी है। तो वो मुस्कुराना नहीं, उसको हम कहेंगे कृत्रिम, दिल से नहीं है वो, लेकिन दिल की प्रसन्नता, दिल की खुशी, जो हम देवताओं को प्रसन्न चित्त कहते हैं, उनके चेहरे पर वो खुशी की झलक होती है या फलक होती है, तो उनके दर्शन मात्र से ही हमारा भी मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उनका चेहरा प्रसन्न चित है। तो इस तरह की चित हमारा प्रसन्न होता है, वो सच्चाई की प्रसन्नता है। तो वो है सत्य ज्ञान की, जो बाबा ने हमें बनाया, उससे जो हमें प्राप्ति हो रही है, जो सर्व बाबा के खजाने हमें मिले, क्योंकि जो प्राप्ति स्वरूप होता है वही प्रसन्न चित होता है और वो संतुष्ट भी होता है। जिसको सर्व प्राप्तियां हैं वही संतुष्ट होता है और वही फिर प्रसन्न भी रहता है। तो उसके आधार पर ही हमारी संतुष्टता और प्रसन्नता है। अगर हम सत्य की परिभाषा देखते हैं दुनिया में, दुनिया के हिसाब से, तो दुनिया सत्य को अपने हिसाब से घुमाती रहती है। विज्ञान कहता है कि जिसका प्रमाण मिल जाए वही सत्य है। अगर प्रमाण नहीं दे सकते तो हम उसको सत्य नहीं मानेंगे, यानी जिसको प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखा दोगे वही सत्य है। अब सब चीजें प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं की जा सकती, क्या आत्मा को सिद्ध कर लिया उन्होंने प्रयोगशाला में? इसीलिए बाबा कहते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आज चांद तक पहुंच गए हैं, है ना, कहां कहां तक क्या क्या उन्होंने नहीं इस दुनिया में रिसर्च किया है, लेकिन किसको नहीं जान सके? अपने आप को नहीं जान सके, अपने सत्य परिचय को नहीं जान सके, परमात्मा को नहीं जान सके, क्योंकि उसे हम प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक जोक जैसा आता है कि एक बार एक नास्तिक प्रोफेसर थे, वो पढ़ा रहे थे, तो भगवान की कोई बात आई तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश की कि भगवान नहीं है, क्योंकि वो खुद नास्तिक थे। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा कि देखो क्लास में ये ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स ने कहा सर दिखाई देता है। तो बोला ये है। अच्छा आपको मेज दिखाई देती है? तो कहाँ दिखाई देती है? तो ये मेज है। फिर कहा कि वो कंप्यूटर यूज करते थे, तो ये कंप्यूटर दिखाई देता है? तो हाँ दिखाई देता है। तो ये अच्छा भगवान दिखाई देता है? स्टूडेंट्स ने कहा नहीं दिखाई देता सर, तो भगवान नहीं है। तो एक जो विद्यार्थी था वो होशियार था, तो वो भी खड़ा हो गया। उसने कहा सर मुझे भी एक सवाल पूछना है। तो सर ने कहा पूछो। तो उसने क्लास को पूछा क्या हमारे सर का दिमाग दिखाई देता है? तो क्या कहेंगे, दिमाग नहीं है। तो इसका मतलब जो चीज दिखाई नहीं देती है क्या वो नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, है ना। हमें पता है कोरोना वायरस आया, क्या वो दिखाई देता था? क्या कोरोना वायरस किसी को दिखाई दिया? लेकिन कैसी बीमारी पैदा करता था, कितना पावरफुल वायरस था वो। तो सब चीजें हमारी आंखों की क्षमता में नहीं है, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य है ही नहीं। तो इसीलिए विज्ञान कई बातों तक नहीं पहुंच पाता। और फिर दूसरा सत्य मानते हैं दुनिया में, राजनीति में जिसको बहुमत मिल गया वही सत्य है। अगर कोई अपराधी है और वो खड़ा हो गया और उसको बहुमत मिल गया, तो वो पद पर आ जाएगा, है ना, वो पोजीशन ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि असत्य को सत्य बना दिया उन्होंने। ऐसे ही कानून क्या कहता है, गवाह ही सत्य है। अब गवाह ने जो गवाही दे दी, चाहे वो दोषी को निर्दोष साबित कर दे, चाहे निर्दोष को दोषी साबित कर दे, गवाह के ऊपर है। भले ही वो शपथ लेते हैं कि गीता पर हाथ रखकर बोलो कि मैं जो कहूंगा भगवान को हाजिर नाजिर जानकर सत्य कहूंगा, लेकिन कितना सत्य गवाही देते हैं। और जो वकील वकालत करने वाले होते हैं वो भी कितना सच बोलते हैं। तो सच को झूठ, झूठ को सच, और उसके कारण निर्दोष को भी सजा हो जाती है। तो कानून ऐसे सत्य को परिभाषित करता है। और अगर हम कहें समाज में, तो समाज किसको सत्य मानता है, जिसके पास कोई पावर है, उसको हम शब्दों में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब क्या हुआ, किसके पास धन की शक्ति है, अगर कोई समाज में पद प्रतिष्ठा रखता है तो वो जो कहेगा उसकी बात को सत्य माना जाएगा, या वो जो शारीरिक रूप से बलशाली है वो जो कहेगा उसकी बात को लोग महत्व देंगे। तो ये समाज का सत्य है, आज के समाज का ये सत्य है। और अध्यात्म किसको सत्य मानता है, अध्यात्म कहता है जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो जगत को मिथ्या क्यों कहा, क्योंकि इस जगत में परिवर्तन हो रहे हैं, हर पल इस जगत में बदलाव आ रहा है, इसीलिए इस जगत को सत्य नहीं माना गया। इसका मतलब ये नहीं कि जगत झूठ है, लेकिन परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन ब्रह्म सत्य है क्योंकि वो, जैसे बाबा कहते हैं, अविनाशी है, परमात्मा और परमात्मा का धाम वो सदा ही है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कहानी आती है राजा जनक की, कि एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है उनके ऊपर और उनको जीत लिया है, बंदी बना लिया गया है और उसको राजा के दरबार में पेश किया गया। तो राजा ने उनको पूछा कि राजा जनक, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप जो कहेंगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका राज्य आपको वापस लौटा दूं, तो मैं राज्य लौटा दूंगा आप जैसा कहेंगे। तो राजा जनक ने कहा, नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो वैसे भी सन्यासी बनना चाहता हूं, तो आप मुझे जंगल में छोड़ दो। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राजा जनक को जंगल में छोड़ दिया जाए। तो वो जब जंगल में पहुंचे तो वहां उनको ऐसा लगा कि मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि मेरा एक वक्त का भोजन का प्रबंध आप कर दो, फिर उसके बाद मैं अपना कर लूंगा। तो सैनिकों ने उनके लिए भोजन लगाया। अब वो तो जंगल था और जंगल में आसमान में चील उड़ रही थी, तो जैसे ही थाली सामने आई वो चील आसमान से नीचे आके थाली में झपट्टा मार के रोटी उठा के ले गई। इतने में उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा, अरे मैं तो अपने महल में सोया हूँ, कोई मेरे ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, कोई मुझे बंदी नहीं बनाया गया, कोई जंगल नहीं है, कोई चील नहीं है। पर उनको विचार चलने लगा कि ऐसा सपना देखा मैंने, ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया मुझे। तो सुबह जब दरबार लगी, दरबार में गुरु आते थे, तो उन्होंने गुरु से ये सवाल पूछा, अपना सपना सुनाया और कहा कि मुझे इसका उत्तर चाहिए कि मैंने वो जो स्वप्न देखा वो सत्य था या मेरा ये वर्तमान सत्य है। तो गुरु ने क्या जवाब दिया ना, अष्टावक्र उनके गुरु थे, गुरु ने जवाब दिया कि राजन, ना तो आपका वो स्वप्न सत्य है और ना ही आपका ये वर्तमान सत्य है, लेकिन जिसने इन स्थितियों का अनुभव किया वो सत्य है। तो किसने अनुभव किया, किसने अनुभव किया? हाँ जी, आत्मा ने अनुभव किया। तो क्योंकि आत्मा हर काल में है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना, तो आज वर्तमान भी बदल जाने वाला है, सपना भी बदल गया, तो ये सत्य नहीं है। लेकिन आत्मा तो हर काल में है, भूतकाल में भी आत्मा ही अनुभव कर रही है, वर्तमान में भी वही अनुभव कर रही है, और आने वाला भविष्य जो होगा उसमें भी आत्मा ही अनुभव करेगी। तो इसीलिए आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है और प्रकृति सत्य है। ये तीनों ही अनादि अविनाशी हैं। हम कहते हैं ना, ये तीन जो इस सृष्टि के विषय हैं, यानी आत्मा और प्रकृति के मेल से ये संसार चलता है, और परमात्मा जो है वो इसका रचयिता है, क्रिएटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है इस सृष्टि का। तो ये तीनों ही अनादि और अविनाशी शक्तियां हैं और इसीलिए ये सत्य हैं। तो अध्यात्म इस तरह से सत्य को परिभाषित करता है। और सच्चाई सफाई हमारे संबंधों और व्यवहार में भी होनी चाहिए। आपस में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, तो आज की दुनिया में भी हम देखते हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया है, तो मनुष्य एक दूसरे जब व्यवहार करते हैं तो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सामने आपके लिए बहुत अच्छा बोलेंगे और जैसे ही आप गए और आपके लिए कोई दूसरा से बात करनी है, तो फिर वो कुछ दूसरी तरह की निंदा गलानी की बातें भी करते हैं। और कई बार अगर हमें वो पता चल जाता है तो संबंध बिगड़ जाते हैं उसकी वजह से। तो यहां भी बाबा कहता है कि जब हम आपस में परिवार में भी संबंध संपर्क में आते हैं, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अच्छा नहीं है तो हम उसके बारे में अंदर में यही सोचेंगे ना कि ये अच्छा नहीं है, या इसके अंदर ये कमी है, या ये ऐसे करता है, ये ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, तो ऐसा क्यों है। लेकिन वो जो भी है, हो सकता है हर इंसान के अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, हो सकता है दूसरे तरह की कमियां होंगी, उसके जैसी नहीं है पर दूसरे प्रकार की कमियां होंगी। लेकिन हमें क्या देखना है, क्या देखना है? अगर उसमें कमी है, उसके अंदर अवगुण है, तो उसके अंदर गुण भी है। तो हमें गुण देखने की श्रीमत है या अवगुण देखने की श्रीमत है? हम उसका गुण देखें तो हमें उसके वो क्या करता है, क्या बोलता है, क्या चलता है, उस पर हमारा ध्यान जाएगा नहीं, उसके गुण पर हमारी नजर जाएगी तो हम गुणग्राही बनेंगे। अगर हमने उसके गुण को अपनी बुद्धि में ग्रहण किया, मैंने देखा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने अपने मन बुद्धि में उसके अवगुण को ग्रहण किया, तो मेरी बुद्धि की स्वच्छता खत्म हो गई, हम सच्चे वैष्णव नहीं रहे, माना बुद्धि की सफाई नहीं रही ना, क्योंकि मैं क्या ग्रहण कर रही हूँ, कचरा। वो उस आत्मा का कचरा है, उसकी कमी है जो उसको छोड़ने का वो पुरुषार्थ कर रही है। आज हम बाबा के पास क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? अपनी कमियां छोड़ने के लिए आए हैं ना, अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए आए हैं। तो फिर वो आत्मा जब वो कर रही है और मैं उसको ग्रहण कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को अस्वच्छ बना रही हूँ ना, यानी मैं अपनी सफाई को, सच्चाई सफाई जो बाबा कहता है, वो मेरी सफाई तो मन की बुद्धि की सफाई तो नहीं रही ना। तो व्यवहार में भी हमें सच्चा रहना है, और अगर हमसे श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हुआ तो हमें बाबा को सच सच सुना देना है। हम सब पुरुषार्थी हैं और हो जाता है कई बार हमसे, तो बाबा कहता है कि सच सुनाएंगे तो आधा माफ हो जाएगा, और अगर सच नहीं सुनाया तो फिर बाबा से तो कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, तो उसका फिर एक का 100 गुना दंड भी है। और यदि हमने आधा माफ किया, आधे को हम योग बल से विनाश कर लेते हैं, बाबा की शक्ति भी हमें मिल जाती है कि आगे के लिए हमसे फिर से वैसा कर्म ना हो। तो इसीलिए बाबा को सच सच सुनाने का महत्व है। कई बार हम परिवारों में देखते हैं ना, छोटी छोटी बातों में आपस में जैसे झूठ बोलते हैं। बच्चे हैं वो कोई ऐसा काम कर लेते हैं और सामने आते हैं माँ बाप के, और अगर माँ को थोड़ा शक होता है या माँ पिता को कोई शक होता है और वो उनसे पूछते हैं, तो फिर डर के कारण कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकी डांट पड़े या मार पड़े, तो झूठ बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई झूठ बोलता है हमारे भय से, तो उसका भी आधा कर्म की गति है ना, तो उसका भी आधा हमारे खाते में आ जाता है। एक बच्चा है, उसने आपके घर की कोई महंगी चीज को नुकसान पहुंचा दिया, तोड़ दिया मानो, बहुत महंगी है लेकिन उसने हाथ लगाया, जैसे जिज्ञासा होती है ना बच्चों को, तो हाथ लगाते हैं इधर उधर, तो उससे टूट गई। तो जैसे ही पता चला ये टूट गई और पूछा गया उससे, तो तुरंत झूठ बोल देगा, नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ी है, मुझे नहीं पता किसने तोड़ी। लेकिन वही बच्चा जो है वो अपने दादा को जाकर के या दादी को जाकर कान में कहेगा कि मेरे से टूटी है, लेकिन माँ को नहीं बताना। उसको पता है कि अगर मैंने दादा और दादी को बताया तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे बेटा कोई बात नहीं है, आगे से तू ध्यान रखना, ऐसे ऐसे काम ना हो। लेकिन अगर माँ को सच बता दिया ततो माँ मारेगी, तो माँ मारेगी इसीलिए माँ को झूठ बोला। तो किसके कारण कौन निमित्त बना झूठ बुलवाने के? हमारे कारण जो भय उस आत्मा को हो रहा है, उसके कारण वो झूठ बोल रहा है। फिर कई बार हम देखते हैं कि कोई कल्याण के लिए झूठ बोलता है, माना अपना कोई स्वार्थ नहीं है। नॉर्मली लोग अपने को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण नहीं, पर उसमें आत्म कल्याण या दूसरे का कल्याण छुपा हुआ है, किसी के जीवन बचाने की बात है और उसके लिए कोई झूठ बोलता है, तो बाबा कहता है वो झूठ पाप नहीं। वैसे कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। तो हम कहते ही है ना कि झूठ बोलना पाप है, दुनिया में भी इस बात को माना जाता है। लेकिन वो पाप कब पाप नहीं बनता है? जैसे वो एक बहुत अच्छी सी कहानी आती है कि एक बार एक गाय भाग रही थी और वो गली में घुस गई, एक व्यक्ति ने देखा, फिर उसने देखा कि एक कसाई भी भागा भागा आ रहा है, हाथ में छुरा है उसके, और वो कसाई ने उसको पूछा कि एक गाय इधर भाग कर आई, तुमने देखा कौन सी गली में गई? तो उसने देखा तो था, लेकिन वो कसाई को देखकर समझ गया कि ये कसाई गाय को क्यों पकड़ना चाहता है, वो गाय का वध करेगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी गली में गई। तो यहां उसने झूठ बोल दिया गाय की जान बचाने के लिए। तो ये जो झूठ बोला वो पाप नहीं है। तो ऐसे ही मानो हम यहां आए, मधुबन में आए, मानो बंधन में है, माताएं बहुत कई बंधन में होती हैं, घर वाले छुट्टी नहीं देते हैं आने के लिए, तो कई माताएं हमको सुनाती हैं कि हम कैसे आए हैं, युक्ति से आए हैं। हमने अपने घर में बोला कि मैं मायके जा रही हूं, तो मायके गए, मायके तो एक दिन भी नहीं रहे, एक दिन मुश्किल से रहे, और लेकिन तुरंत यहाँ मधुबन आने का प्रोग्राम बना लिया। तो क्योंकि हमें मधुबन आना है, बाबा से मिलना है, अपने इस दैवी परिवार से मिलना है, तो हम मधुबन पहुंच गए। लेकिन वहां क्या बताया? वहां सच नहीं बताया, क्योंकि वहां अगर सच बताएंगे तो वो कभी भी हमें आने की छुट्टी नहीं देंगे। तो अगर हम इस तरह से मधुबन में आए, तो कई बार कईयों को लगता भी है ऐसा कि क्या हमने ये झूठ बोला, तो क्योंकि इसमें हमारी उन्नति है, हमारा स्वपुरुषार्थ, या हम कहेंगे कि जो हमारी तीव्र पुरुषार्थ करने की चाह है या हमारी आत्मिक उन्नति करने की चाह है, वो हमारे लिए वो कल्याण की बात है ना, तो उसको बाबा नहीं कहता कि ये कोई हमारा पाप लगता है, या किसी दूसरे के भी कल्याण के लिए अगर हम कुछ इस तरह कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें जैसे समय स्थान स्थिति के अनुसार जो कर्म किया जाता है, जैसे कर्म की गति में हम समझते हैं, तो कल्याण के लिए अगर हमने कोई ऐसी युक्ति रची है तो फिर वो पाप नहीं बनता है। और अगर हम पाप ये सच्चाई के लिए जो बाबा हमें कहते हैं कि हम बाबा के बच्चों को सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है दुनिया के आगे, तो उसकी विधि माना एक तो बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, लेकिन अब हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करें। तो वो अथॉरिटी और निर्भयता जैसी ब्रह्मा बाबा में थी, जैसे मुरली में भी बाबा ने कहा कि पवित्रता की बात के लिए ब्रह्मा बाबा को लोग कहते थे कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पवित्रता की बात है ना, इसको ऐसे नहीं कहो कि आपको पवित्रता का पालन करना ही है, आप कहो कभी कभी। तो बाबा कभी भी उससे हटा नहीं, चाहे समाज ने कितना भी विरोध किया, चाहे बाबा को कितना भी सहन करना पड़ा, लेकिन क्योंकि ये शिव बाबा की श्रीमत थी तो बाबा ने कभी भी उस बात को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाबा ने कहा कि ये शिव बाबा कह रहा है, मैं नहीं कहता हूं। और बाबा को इस ज्ञान के द्वारा, इस सत्यता की शक्ति के द्वारा ही सत्ययुग की दुनिया की, इस श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना करनी है। तो इसीलिए हम भी जब किसी को सुनाते हैं तो उसके अंदर वो अथॉरिटी के बोल भी हो लेकिन निर्माणता भी हो। जैसे बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो बाबा हम बच्चों को शिक्षाएं देने के लिए कई बार ऐसे ऐसे कड़े शब्द बोलते हैं मुरली में, लेकिन वो शब्द सुनते हुए हमें ये नहीं लगता है कि कोई अहंकार से उस बात को कह रहा है। वो हमें क्या लगता है, हमारे भले के लिए बाबा ये कह रहे हैं, जैसे कि वो हमारे प्रति शुभ भावना है कि हम जल्दी से जल्दी इन कमियों से मुक्त हो जाएं, उस भाव से बाबा हमें कह रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम दूसरों को सुनाएं, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई शास्त्रवादी से हम बातचीत कर रहे हैं तो उनको अपने शास्त्रों के ज्ञान का नशा होता है और हमें पता है कि हम जो सुना रहे हैं वो सत्य ज्ञान है, तो डिबेट में चले जाते हैं, आपस में बहस करने लग जाते हैं, और जब बहस करते हैं तो फिर आवाज भी ऊंची होने लग जाती है, और कई बार तो इवन गुस्से में भी कहने लगते हैं। तो ये बाबा कहता है ज्ञान सुनाने का सही तरीका नहीं है, जितनी अथॉरिटी उतनी ही निर्माणता हो और उतना ही निमित्त भाव हो, क्योंकि ज्ञान किसका है, ज्ञान कोई मेरा नहीं है, स्वयं परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है जो हम आत्माओं को सुना रहे हैं। तो जैसे बाबा ने सदा सत्यता की शक्ति से अब परमात्मा के दिल को जीता, पूरे परिवार को, जो भी हमारा ईश्वरीय परिवार था, बाबा सदा ही पूरे ब्राह्मण परिवार के प्रिय रहे, सब उनको मेरा कहते थे, कोई भी था हर एक को लगता था बाबा मेरा है। आज भी बाबा भले अव्यक्त हैं, लेकिन हर एक बाबा के बच्चे के मन से क्या निकलता है, हाँ मेरा बाबा निकलता है ना, कोई कहता है क्या तेरा बाबा है और मेरा नहीं है, हम सबको महसूस होता है। तो वो अथॉरिटी बाबा के अंदर, वो अथॉरिटी थी जो सत्यता की शक्ति है, उसके आधार पर उन्होंने सबका दिल जीता। सच्चाई सफाई वो ऐसा गुण है जिससे हम दिल जीत लेते हैं, दिल पर राज करते हैं, तो परमात्मा के भी दिल तख्त नशीन बनते हैं और सर्व अपने ब्राह्मण परिवार के भी हम प्रिय बन जाते हैं। तो दिव्यता को प्राप्त करने का, सबसे श्रेष्ठ गुण ही है सत्यता, और सत्यता के आधार पर ही हमारी ये पवित्रता की शक्ति है। ओम शांति।
की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम के प्रकाश को फैलाएंगे। भेदभाव हो नहीं यहाँ कोई, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे,
ऐसा एक परिवर्तन
जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है। शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है। प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है। प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है। हिंसा को अहिंसा से मिटाएंगे, धरती को स्वर्ग हम बनाएंगे। कभी कहीं भी अशांति हो नहीं, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। कहने को तो धर्म राष्ट्र भाषाएं अनेक हैं,
अनेक हैं।
दुनिया के इंसान सभी भाई हैं, एक हैं,
एक हैं।
कहने को तो धर्म राष्ट्र भाषाएं अनेक हैं, दुनिया के इंसान सभी भाई हैं, एक हैं। विश्व को संदेश ये सुनाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे। सभी जिए निर्भय हो जगत में, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। सत्य की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम के प्रकाश को फैलाएंगे। भेदभाव हो नहीं यहाँ कोई, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। सत्य की मशाल हम जलाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे। ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, विश्व को संदेश ये।